ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण। तो सभी का स्वागत है इस प्रातःकालीन भागवत सत्र में। तो आज हम पढ़ेंगे श्री चैतन्य चैतामृत आदि लीला भाग एक अध्याय एक और श्लोक संख्या 57। चिंतामणिर् जयति सोमगिरिर् गुरुर्मे शिक्षा गुरुश्च भगवान् शिकिपिञ्च मौलिः यत्पादकल्पतरुपल्लवशेखरेषु लीला स्वयंवर रसं लभते जयश्रीः। चिंतामणिर्जयति सोमगिरिर्गुरुर्मे शिक्षा गुरुश्च भगवान् शिकिपिञ्च मौलिः यत्पादकल्पतरुपल्लवशेखरेषु लीला स्वयंवर रसं लभते जयश्रीः। चिंतामणिर्जयति सोमगिरिर्गुरुर्मे शिक्षा गुरुश्च भगवान् शिकिपिञ्च मौलिः यत्पादकल्पतरुपल्लवशेखरेषु लीला स्वयंवर रसं लभते जयश्रीः। दोहराइए। चिंतामणिर्जयति सोमगिरिर्गुरुर्मे शिक्षा गुरुश्च भगवान् शिकिपिञ्च मौलिः यत्पादकल्पतरुपल्लवशेखरेषु लीला स्वयंवर रसं लभते जयश्रीः। चिंतामणिर्जयति सोमगिरिर्गुरुर्मे शिक्षा गुरुश्च भगवान् शिकिपिञ्च मौलिः यत्पादकल्पतरुपल्लवशेखरेषु लीला स्वयंवर रसं लभते जयश्रीः। माताजी। चिंतामणिर्जयति सोमगिरिर्गुरुर्मे शिक्षा गुरुश्च भगवान् शिकिपिञ्च मौलिः यत्पादकल्पतरुपल्लवशेखरेषु लीला स्वयंवर रसं लभते जयश्रीः। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। चिंतामणि जयति, चिंतामणि की जय हो। सोमगिरि, सोमगिरि दीक्षा गुरु, गुरु आध्यात्मिक गुरु, मैं मेरे, शिक्षा गुरु च और भगवान, भगवान शिखिपिंच मोर पंखों सहित, मौलि जिनका सिर, यत जिनका पाद चरण कमल का, कल्पतरु कल्प वृक्षों की भांति, पल्लव नवीन पत्रों की तरह, शेखरेषु पांव के नाखूनों पर, लीला स्वयंवर माधुर्य लीलाओं का, रसम रस लभते मिलता है, जय श्री श्रीमती राधा रानी। अनुवाद। चिंतामणि तथा मेरे दीक्षा गुरु सोमगिरि की जय हो। मेरे शिक्षा गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, जो अपने मुकुट में मोर पंख धारण करते हैं। कल्प वृक्ष तुल्य उनके चरण कमलों की छाया में जय श्री राधा रानी नित्य संगिनी के रूप में दिव्य रस का आस्वादन करती हैं। तात्पर्य, यह श्लोक कृष्ण कर्णामृत से लिया गया है, जिसे बिल्व मंगल ठाकुर नामक एक महान वैष्णव सन्यासी ने लिखा था, जिन्हें लीला शुक भी कहा जाता है। वे भगवान की नित्य लीलाओं में प्रविष्ट होने के लिए उत्कट इच्छुक थे और वे 700 वर्षों तक वृंदावन में ब्रह्म कुंड के समीप रहे, जो आज भी स्नान करने के सरोवर के रूप में विद्यमान है। बिल्व मंगल ठाकुर का जीवन चरित श्री वल्लभ दिग्विजय नामक पुस्तक में दिया हुआ है। वे द्रविड़ प्रदेश में 8वीं सदी शक संवत में उत्पन्न हुए और विष्णु स्वामी के प्रमुख शिष्य थे। द्वारका में शंकराचार्य के मठ में मंदिरों तथा मठों की जो सूची मिलती है, उसमें बिल्व मंगल का नाम वहां के द्वारकाधीश मंदिर के संस्थापक के रूप में उल्लिखित है। उन्होंने अपने अर्चा विग्रह की सेवा का भार वल्लभ भट्ट के शिष्य हरि ब्रह्मचारी को सौंपा था। बिल्व मंगल ठाकुर ने वास्तव में भगवान कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश किया था। उन्होंने कृष्ण कर्णामृत नामक पुस्तक में अपने दिव्य अनुभवों एवं उपलब्धियों का उल्लेख किया है। इस पुस्तक के प्रारंभ में उन्होंने अपने विभिन्न गुरुओं को अपना नमस्कार अर्पित किया है और यह ध्यान देने की बात है कि उन्होंने सबकी समान रूप से वंदना की है। उन्होंने जिस प्रथम गुरु का उल्लेख किया है वह है चिंतामणि, जो उनकी शिक्षा गुरुओं में से एक थी, क्योंकि उसने ही उन्हें सर्वप्रथम आध्यात्मिक मार्ग दिखलाया था। चिंतामणि एक वैश्या थी, जिनसे अपने प्रारंभिक जीवन में बिल्व मंगल की घनिष्ठता थी। चिंतामणि ने उन्हें भक्ति पथ पर चलने की प्रेरणा दी थी, क्योंकि उसने ही कृष्ण प्रेम द्वारा सिद्धि के लिए प्रयास करने हेतु इस संसार को त्यागने के लिए बिल्व मंगल को प्रेरित किया था। इसीलिए बिल्व मंगल ठाकुर ने सर्वप्रथम उसे ही नमस्कार किया है। तत्पश्चात वे अपने दीक्षा गुरु सोमगिरी को नमस्कार करते हैं और उसके बाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को, क्योंकि वे भी उनके शिक्षा गुरु थे और वे स्पष्ट रूप से मोर पंखों से युक्त मुकुट धारण करने वाले भगवान का उल्लेख करते हैं, क्योंकि वृंदावन के स्वामी गोप कुमार कृष्ण बिल्व मंगल से बातचीत करने और उन्हें दूध देने आया करते थे। भगवान श्री कृष्ण की इस स्तुति में वे वर्णन करते हैं कि जयश्री अर्थात लक्ष्मी देवी, श्रीमती राधा रानी दिव्य माधुर्य रस का आनंद लेने के लिए उनके चरण कमलों की छाया में आश्रय लेती है। संपूर्ण कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ श्री कृष्ण तथा श्रीमती राधा रानी की दिव्य लीलाओं को समर्पित है। यह एक ऐसी पुस्तक है जिसे श्री कृष्ण के सर्वोच्च उन्नत भक्तों को पढ़ना तथा समझना चाहिए। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य चैतामृत आदि लीला अध्याय एक श्लोक संख्या 57। चिंता मणिर जयति सोम गिरिर गुरुर में शिक्षा गुरुश्च भगवान श्री की पिंछ मौलि यत्पाद कल्पतरुपल्लव शेखरेशु लीला स्वयंवर रसम लभते जय श्री। चिंतामणि तथा मेरे दीक्षा गुरु सोमगिरी की जय हो, मेरे शिक्षा गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो जो अपने मुकुट में मोर पंख धारण करते हैं। कल्प वृक्ष तुल्य उनके चरण कमलों की छाया में जय श्री राधा रानी नित्य संगनी के रूप में दिव्य रस का आस्वादन करती है। तो जैसा कि इस अध्याय का शीर्षक है गुरुवर्ग, और अध्याय के प्रारंभ से ही हम देखते हैं कि श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है अपने गुरुओं को प्रणाम करते हुए जो है मंगलाचरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो किस प्रकार श्रृंखला में सबको सबको जो है सम्मान देते हुए वो आगे बढ़ते हैं। और फिर उसी श्रृंखला में हम देखते हैं कि आगे जो है भगवान श्री कृष्ण जो ब्रह्मा जी को उपदेश देते हैं, जो श्रीमद् भागवतम में दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में श्लोक संख्या 31 से श्लोक संख्या 36 तक, तो वही सब श्लोक यहाँ पर पुनः आते हैं श्लोक संख्या 51 से श्लोक संख्या 56 तक। और इसमें भगवान भी उसी परंपरा को, उसी गुरु शिष्य परंपरा को यहाँ पर स्थापित करते हैं या प्रतिपादित करते हैं कि जो है ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाना चाहिए। तो स्वयं भगवान कृष्ण जो है ब्रह्मा जी को वो ज्ञान प्रदान करते हैं, कौन सा ज्ञान, ताकि वह जो है सृष्टि की सृष्टि जो है वो शुरू कर सके, जो सृष्टि ब्रह्मा जी के हिस्से में जो थी, जो विसर्ग जिसे कहते हैं, उसकी रचना जो है वो शुरू कर सके। तो ऐसा कल भी हमने सुना एक कक्षा में कि कल या परसों जो जो ब्रह्मा जी हैं और जो उस लोक में सत्य लोक में जो भागवत है 1 करोड़ श्लोकों वाली, उसका कितनी बार अध्ययन कर चुके हैं, 3 बार। तो ऐसी योग्यता लिए हुए जो व्यक्ति हैं वो किससे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, भगवान उनको चुन रहे हैं ज्ञान देने के लिए। और स्वयं भगवान उस गुरु शिष्य परंपरा का क्या कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं कि कैसे इस परंपरा के माध्यम से तुम ज्ञान ले सकते हो और अपने जीवन का जो उद्देश्य है या सफलता जो उसको प्राप्त कर सकते हो। और उसी श्रृंखला में फिर आगे हम देखते हैं कि यहां पर अब भगवान के जो दिया हुआ ज्ञान है वो श्लोक पूरे होते हैं और यहां पर थोड़ी अलग श्रृंखला हम देखें अगर तो शुरू होती है। और यहां पर खास करके बिल मंगल ठाकुर जो महान भक्त हैं उनका जो मंगलाचरण है, उनका जो सम्मान जो दे रहे हैं वो अपने गुरु को, तो वो किस प्रकार है वो यहां पर दर्शाया गया है। वो भी खासकर आज के श्लोक में हम देखते हैं कि सबसे पहले सर्वप्रथम वो किसका नाम रखते हैं, चिंतामणि, जो कि एक वैश्या है। तो बिल मंगल ठाकुर का की जो जीवनी है सभी भक्त लोग जानते हैं, तो सबसे पहले वो किसका नाम रख रहे हैं, चिंतामणि, जो कि एक वैश्य है। तो कैसे वह इस स्थान के जो है लायक हो गई, कैसे वह इस योग्य हो सकी, कैसे उसको गुरु की श्रेणी में रखा गया, जैसे हालांकि आगे नाम लेते हैं जिन्होंने उनको दीक्षा दी है, दीक्षा गुरु सोमगिरी, और फिर जो नित्य हमारे शिक्षा गुरु हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु, जो कृष्ण भगवान जो कृष्ण है वो सबके क्या है, वास्तविक जो गुरु है वह तो भगवान श्री कृष्ण ही है। तो उनको भी प्रणाम करते कि वो मेरे क्या है, शिक्षा गुरु हैं। लेकिन सबसे पहले किसको स्थान दे रहे हैं, चिंतामणि को। तो उसको गुरु का जो है पद वो कैसे मिल रहा है, तो ये अलग अलग श्रृंखला यहां आ रही है। कहां तो भगवान स्वयं भगवान जो अपौरुषेय है, जो सभी प्रकार के दोषों से मुक्त है, पूर्ण शुद्ध है, विशुद्ध सत्व में रहने वाले, तो वो ज्ञान दे रहे हैं। और अगले ही पल हम देखते हैं कि श्रृंखला में किसका नाम आ रहा है, सबसे पहले चिंतामणि, जो एक वैश्य है, भौतिक शरीर लिए हुए है, तो उसका नाम लिया जा रहा है और उसको वो सम्मान दिया जा रहा है कि सबसे पहले जो है चिंतामणि, क्योंकि हम सुनते हैं उनकी जीवनी में कि सबसे पहले वही जो है उनको उनकी आंखें खोलने का कार्य करती है। तो गुरु का स्थान दिया गया है, शिक्षा गुरु। तो हम थोड़ा समझेंगे इस आज के श्लोक के माध्यम से कि गुरु है क्या, गुरु की क्या परिभाषा है, या गुरु क्या है, कोई व्यक्ति विशेष के लिए कोई एक पदवी है या कोई तत्व है, क्या है, थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे समझने का, जो हम परंपरा में आचार्यों से और भक्तों से सुनते आ रहे हैं उसके माध्यम से। तो स्कंद पुराण में एक परिभाषा आती है, एक श्लोक आता है, गु शब्दस्य अंधकारस्य रुह शब्दस्थान निरोधकः अंधकार निरोधत्वाद गुरु इत्य अभिधीयते। गुरु का क्या मतलब है? तो दो इसमें क्या है, अक्षर हैं। गु, गु क्या, किस बात को जो है बताता है या दर्शाता है? अंधकारस्य, जो अंधकार को बता रहा है। यह हम देखते हैं, हम शब्द उपयोग करते हैं गुह्य। गुह्य मतलब कैसा है वो, कोई वस्तु गुह्य है या कोई विषय गुह्य है तो कैसा है मतलब, वो प्रदर्शित नहीं है, है ना, हमारे सामने नहीं है, मतलब छिपा हुआ है या बोल सकते हैं अंधेरे में। तो जो गु शब्द है वो किसको बता रहा है यहां पर? अंधकार को बता रहा है। गुह्य या गुप्त, ऐसे और भी शब्द हम समझ सकते हैं। और रु, रु शब्द स्थान निरोधकः, और रु शब्द किसके लिए है? जो अंधकार को दूर करे। तो प्रकाश अंधकार को दूर करेगा, या हम कह सकते हैं अग्नि, अग्नि का भी धर्म हम सुनते हैं, क्या धर्म है? प्रकाश और ताप, प्रकाश है। और जो रम है वो भी हम सुनते हैं कि अग्नि का ये बीज मंत्र है। तो जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त होते हैं वो शुद्धिकरण के लिए जो आसपास का जो वातावरण को शुद्ध करने के लिए बीज मंत्र से क्या है, शुद्धिकरण करते हैं, क्योंकि अग्नि जो है सबको शुद्ध करती है। तो अंधकार को दूर अग्नि से किया जा सकता है। श्री श्री राधादास बिहारी भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो रू शब्द किस लिए है? अंधकार को दूर करने के लिए, जिससे अंधकार को दूर किया जा सके, प्रकाश के लिए। तो गुरु, तो गुरु किस, क्या बता रहा है? गुरु शब्द किस लिए है, या गुरु कौन है, किसे हम गुरु कह सकते हैं? जो हमारे अंधकार को दूर करे। प्रतिदिन हम जो है ये प्रार्थना भी करते हैं, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो जो हमारा अंधकार है उसको क्या करिए, तिमिर, जो अंधकार जो तमस है उसको आप दूर करिए, वो चक्षु प्रदान कीजिए। तो इस प्रकार जो गुरु शब्द है वो किस लिए है? जो हमें प्रकाश दिखाए, जो अंधकार से बाहर ले जाए। और अधिक अच्छे से समझे तो खास करके हम देखते हैं कि हम इस भौतिक जगत में जो अंधकारमय है और हम किस अंधेरे में डूबे हुए हैं, हम मैं और मेरे के अंधेरे में डूबे हुए हैं। मैं मतलब शरीर और उसके संबंध में हर वस्तु की आसक्ति में हम डूबे हुए हैं। तो ये पूर्ण रूप से हम किस में डूबे हुए हैं? अंधकार में डूबे हुए हैं। तो इस अंधकार में, या शरीर को सुख देने के लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए सब प्रकार के हम कार्यों में जो है लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से हम पूर्ण रूप से क्या है, अंधकार में है। और इस प्रकार का इंद्रिय सुख वाला जो जीवन है वो हम जानते हैं शास्त्रों के माध्यम से कि वो हमें अंधकार में और अंधकार में ले जाता है। अंधकूपम बताया गया है, बहुत ही गहरे कुएं में, अंधे कुएं में ले जाता है, जहां पे कोई आशा या कोई गुंजाइश नहीं है दिखने की या बाहर निकलने की। तो इस प्रकार का यह जगत अंधकारमय है। तो इस जगत से जो बाहर निकाले, किस ओर लेके जाए? जो भगवान की ओर लेके जाए, जो भगवान कृष्ण की ओर हमें लेके जाए, वह कौन है? वह गुरु है। तो बिल्वमंगल ठाकुर, जो कि भक्त बनने के पहले का जो जीवन है, पूर्ण रूप से किसमें लगे हुए थे? अंधकारमय जीवन है, पूर्ण रूप से इंद्रिय तृप्ति में इतने लगे हुए थे, इतने डूबे हुए थे कि उनको कुछ और दूसरा सुदबुद्ध नहीं थी। उनके पिताजी का क्या था? श्राद्ध था। और उनके मन में क्या चल रहा था? कि हाँ, मुझे इस वेश्या के पास जाना है, पूरा वही चल रहा था। और बीच में ही छोड़ के चले गए, और नदी में इतना उफान था तो लाश का सहारा लेके चले गए, सर पर रस्सी पकड़ के चढ़ गए। इस तरह से कितने अंधे में, जो अंधेरे में डूबे हुए थे। और जब पहुंचते हैं वेश्या के पास, तो तो वैश्या ऐसा क्या कर देती है? वैश्या हम समझ पा रहे कि उसका कार्य ही कैसा है, जो खुद पापमय कार्य में लगी हुई है, जो खुद अंधेरे में है, तो वो कैसे किसी को प्रकाश में ला सकता है? हम कभी एग्जाम्पल ऐसा देते हैं ना कि जो व्यक्ति का खुद का हाथ बंधा हुआ है तो वो किसी दूसरे को कैसे मुक्त कर सकता है? या परिवार में या संसार में जो खुद बंधा हुआ है, प्रकृति के गुणों द्वारा जो बंधा हुआ है, वो कैसे किसी को मुक्त कर सकता है? लेकिन जो गुरु है उनकी क्या स्थिति है? वह इन तीन गुणों से परे है, मुक्त है, तभी तो वह मुक्त कर पाएगा। वो भी क्यों? क्योंकि वो भगवान कृष्ण की शरण लिए हुए है, अन्यथा संभव नहीं है। क्योंकि केवल भगवान ही है जो हमें अंधेरे से बाहर निकाल सकते हैं। मम माया द्वितीय मामेव ये प्रपद्यन्ते, भगवान खुद बता भी रहे हैं। तो वैश्या खुद पापमय कार्यों में है, लेकिन कैसे जो है वो इस प्रकार का ज्ञान दे रही है, इस प्रकार का प्रकाश दिखा रही है। किसको? बिलु मंगल ठाकुर को। वो कहती है कि इतने आप अंधे हो गए हो, जो केवल मांस और हड्डियों के पीछे आप इतना पागल हुए जा रहे हो, इतना भागे जा रहे हो, कुछ सुध-बुध नहीं है, लाश में तैर के आ गए, सांप पकड़ के चढ़ गए, और बस इतना सुनते ही, कोई बहुत ज्यादा लेक्चर नहीं हुआ 1-2 घंटे का, ऐसा वर्णन तो नहीं है, या ऐसा कुछ बहुत समय तक वो सुन रहे हैं, फिर नहीं, इतना सुनते ही क्या हो गया? तुरंत तत्क्षण क्या हो गया? वो वैराग्य आ गया। तो ऐसा बताते हैं कि बिल्व मंगल ठाकुर इस जन्म में तो क्या था, ब्राह्मण के यहां उनको जन्म मिला, लेकिन पिछले जन्म में कहां तक पहुंचे थे? भाव भक्ति के स्तर तक पहुंच चुके थे, और फिर किसी कारणवश, ऐसा प्रभुपाद कहते हैं, बताते हैं किसी कारणवश, कारण नहीं बताया गया है, तो किसी कारणवश उनका क्या होता है, पतन हो जाता है। लेकिन फिर भी जो भगवद गीता के माध्यम से हम समझते हैं, योग भ्रष्टो भी जायते, जो इस स्तर तक पहुंच जाए भक्ति में, वो किसी कारणवश भ्रष्ट हो गया है, तो भी उसे क्या होता है? शुचि नाम श्री मताम गेहे, उसे क्या है, धनवान परिवार में क्या है, जन्म मिलता है। और बिल्वमंगल ठाकुर को भी यहां पर जन्म मिलता है कहां? एक धनवान परिवार में, कोई किसी चीज की कुछ कमी नहीं, सभी सुख सुविधाएं, आवश्यकताओं की पूर्ति, भोग विलास सब है। तो इस प्रकार का धन भी हम देखते हैं, हमें कहां ले जाता है? अंधेरे में ले जाता है। बहुत कम ऐसा होता है, या भक्तों की कृपा से, भगवान की कृपा से हम देखते हैं कि जो अपने धन का सदुपयोग कर पाता है भगवान की सेवा में, अन्यथा अपने इंद्रिय भोग में, किसी प्रकार के तथाकथित समाज के सुधार कार्य में लगाता है। तो बिल्वमंगल ठाकुर भी इसी प्रकार के परिवार से थे, इस प्रकार उनकी जो है आसक्ति थी। तो जैसे ही सुना, क्योंकि पिछले जन्म का उनका भक्ति था, उनका सुकृति था, भक्ति थी, तो सुनते ही तुरंत क्या हो गया? वो वैराग्य आ गया। वो इतना वैराग्य, किस हद तक वैराग्य जाता है कि बोलते हैं कि जो आंखें हैं ये हमेशा भागेंगी, किधर भागेंगी? विषय की तरफ। जैसे हम देखते हैं लोहा चुंबक का आकर्षण होता है, तो वैसे इंद्रियां हमेशा किधर भागती हैं? विषयों की तरफ भागती हैं, हमेशा भागती हैं। तो देखते हैं कि जो आंख है हमेशा भागेगी, इंद्रियों को जो है कुछ ना कुछ विषय चाहिए, तो स्त्रियों को देखने में लगी रहती है, तो इतना उनको परेशानी हो रही थी, तो क्या करते हैं? वो अपनी आंखें फोड़ लेते हैं। तो कोई पागल भी कहेगा, लेकिन वो अलग स्तर पर है, क्योंकि पूर्ण रूप से जो है कहां लीन होना चाहते हैं, भगवान के जो है लीलाओं में पूर्ण रूप से वो अपना आपको उसमें रत करना चाहते हैं, लगा देना चाहते हैं। और फिर हम सुनते हैं कि वो कुएं में गिर जाते हैं, और फिर भगवान स्वयं, यहाँ पे दिया भी तात्पर्य में कि भगवान स्वयं उनकी देख रेख करने आते हैं, इतना इतना जो है प्रगाढ़ता वो भक्ति में प्राप्त कर लेते हैं, इतनी गहराई से जो है भक्ति करते हैं, इतनी तीव्रता से जो है वो भक्ति करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं या नाम उच्चारण करते हैं, और भगवान जो है उनकी देख रेख करते हैं। भगवान कहते भी हैं योग क्षेम वहाम्यहम। तो इस प्रकार जो है बिल्वमंगल ठाकुर केवल उसके कुछ छोटे से एक निर्देश मात्र से जो है वो जो भगवान से विमुख थे, भगवान की ओर उन्मुख हो गए, कृष्णोन्मुख हो गए, केवल उसके एक छोटे से निर्देश से। इसके लिए जो इतनी बड़ी उपाधि जो उनको दे रहे हैं, गुरु की पदवी जो प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि असली गुरु वही है जो जो हमें कृष्ण की ओर लेके जाए, जो कृष्ण से हमारा संबंध पुनः स्थापित करने के लिए हमें शिक्षा दे, हमें प्रयास कराए, हमें नियम बताए, और इस प्रकार जो है हमारी प्रगति हो, तो वह गुरु है। तो केवल कोई नाम से गुरु नहीं होता है। चैतन्य महाप्रभु भी यही बताते हैं कि वो श्लोक है केई विप्र किबा किबा विप्र किबा शुद्र किबा न्यासी किबा शुद्र नय यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। तो वन जो जानता है कि भगवान कृष्ण का तत्व क्या है, कौन भगवान है, भगवान कृष्ण जो है पूर्ण विष्णुम भगवान है, तो वह जो है असली गुरु है। तो यहां पर जो ये वैश्य है चिंतामणि नाम की, वह केवल कुछ, हालांकि वो शब्द तीखे होते हैं, मधुर शब्द तो नहीं थे, वैसा ही साधु का कार्य भी होता है, ऐसा भागवतम में आता है कि वह बहुत इतना नहीं बहुत मधुर मधुर बोलेगा, नहीं वो शास्त्रों को एकदम जो है जैसा है वैसा यथा रूप में प्रस्तुत करता है, तो वो थोड़ा सा कटाक्ष रूपी होता है, तीखा होता है, चुभने वाला होता है, लेकिन चुभेगा तभी तो हम कुछ करेंगे, है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, घर में माँ होती है तो वो प्रेम पूर्वक जो है बच्चों को देखती है, लेकिन पिताजी कभी कभी लगाते हैं, है ना, मतलब मारते भी हैं, तो सुधरता है, तो दोनों तरफ से आवश्यकता है। तो साधु जो होता है वो हमें शास्त्रों को ऐसे ही बताता है, तो थोड़ा तीखा लगता है, लेकिन वहीं से क्या होता है हमारा जीवन बदल जाता है। और यहाँ पे यही हुआ, बिलमंगल ठाकुर उनका जीवन बदल गया, इतना भगवान की ओर उन्मुख हो गए, प्रगाढ़ प्रेम प्राप्त किए, भगवान भगवान जो है उनकी देख रेख करने के लिए आ रहे हैं, ऐसी स्थिति भगवान जो है उनको दे रहे हैं, वो ऐसी प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो वैश्य है उन्होंने उस अंधकार से उनको प्रकाश की ओर लेके गई, और बताया भी गया है कि जो अंधकार है वह माया को प्रदर्शित करता है, यह माया अंधकार की, वो जो जो कृष्ण है जो भगवान है वो कैसे हैं, वह सूर्य के समान है जो है पूर्ण ज्ञानमय है। और फिर यहां पे बताया गया है तात्पर्य में कि जो बिलमंगल ठाकुर हैं वो क्या हैं, वो लीला शुक हैं, शुक्र रूप में भगवान की लीलाओं का क्या कर रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं, और लेकिन इसके लिए तपस्या करी, कहां तपस्या करी है, ब्रह्म कुंड, वहां पर तपस्या करिए 700 वर्षों तक, तब जो है उन्हें वह स्तर जो है प्राप्त होता है। तो ऐसा बताते हैं कि जो ब्रह्म कुंड है अभी भी है वृंदावन में, और यहां से ही जो वृंदा देवी का जो विग्रह हम देखते हैं वह प्रकट हुआ रूप गोस्वामी के माध्यम से। तो 6 गोस्वामियों ने काफी जो है चैतन्य महाप्रभु के आदेश अनुसार वृंदावन की लीला प्रकट, जो लीला जहां पे हुई है उन स्थलियों को प्रकट किया है। तो उनमें से एक यह भी है कि जो वृंदा देवी जो है वह इस कुंड से जो है, ऐसा बताया जाता है। तो यहां से हमने समझा कि जो गुरु है वह कौन है जो हमें कृष्ण की ओर लेके जाए, जो भगवान की ओर लेके जाए वही जो है असली गुरु है, वो कोई भी हो सकता है। और भगवान के लिए ऐसी कोई सीमा नहीं है कि केवल भक्त के माध्यम से ही किसी को वो प्रेरणा दे। यहां पे तो हमारे सामने यह प्रमाण है, जो एक वैश्य है सबसे पापमय कार्य में जो लगी है उसके माध्यम से भगवान ने जो है उनको देश दिया। तो भगवान के लिए किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। तो जो गुरु है वो है कौन, तो वास्तव में जो भगवान है वही जो है हमें जो है गुरु के रूप में आगे हमें दिशा दिखाते हैं, किसी व्यक्ति के माध्यम से, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भगवान परमात्मा रूप में है, तो किसी के भी माध्यम से जो है वो हमें प्रेरित कर सकते हैं भक्ति के लिए। और वास्तविक भगवान जो है वो है कृष्ण, कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। जीव गोस्वामी बताते हैं कि एक गुरु तत्व और दूसरा शिव तत्व, इन दोनों को समझना आसान नहीं है, इन दोनों को समझना बहुत कठिन है, असंभव नहीं है लेकिन कठिन है। लेकिन परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से, शुद्ध भक्तों के माध्यम से, संघ के माध्यम से, वाणी के माध्यम से हम उसको समझ सकते हैं, कृष्ण कृपा जब हो तब। तो वास्तविक गुरु जो है वह कृष्ण है। तो गुरु एक है या अनेक है, इसमें हम अध्याय में देखते हैं कि शिक्षा गुरु कई बताए गए हैं और दीक्षा गुरु एक बताया गया है। तो इस तरह से बताया जाता है, उपमा दी जाती है, या समझने के लिए वैसा बताया जाता है कि जैसे सूर्य होता है, तो सूर्य तो एक होता है लेकिन उसका प्रतिबिंब जो होता है, हम कई कई प्रतिबिंब उसके हो सकते हैं, असंख्य प्रतिबिंब उसके हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य सूर्य है वह एक ही है। तो ऐसे ही कई गुरु हैं, शरीर के माध्यम से देख लें या व्यक्तिगत माध्यम से देखें या गुणों के माध्यम से या भाव के माध्यम से या रस के माध्यम से, तो कई गुरु हैं, लेकिन फिर भी ये भिन्नताएं तो हैं ही, लेकिन अभिन्न भी हैं। तो अभिन्न कैसे हैं? अभिन्न इसलिए हैं कि सबका उद्देश्य क्या है, कि वे सभी हमें कहां ले जाते हैं, वे हमें कृष्णोन्मुख बनाते हैं, कृष्ण की ओर हमें वे लेके जाते हैं, इसलिए अभिन्न है और भिन्न भी है। तो उदाहरण हम देखते हैं गुरु शिष्य परंपरा में, हम देखें तो श्रील गौर किशोरदास बाबाजी महाराज और उनके शिष्य श्रील भक्ति सिद्धांत जी। तो गौर किशोरदास बाबाजी महाराज एकदम वैराग्य, संपूर्ण वैरागी, और उनके पास एक आमंत्रण आता है किसी राजा से मिलने का, तो मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि राजा मतलब धनवान व्यक्ति, मतलब भोग विलास में लगा हुआ व्यक्ति, तो उससे मिलके भी क्यों समय जो है व्यर्थ गवाया जाए। फिर लोग कहते हैं आप कुटिया बना लो भजन के लिए। बोले कुटिया बनेगी तो लोग मिलने आएंगे, परेशान करेंगे, समय फिर ऐसे पजल्प में निकल जाएगा। देखिए आचार्य हमें क्या शिक्षा देते हैं, अव्यर्थ कालत्वम, बिल्कुल भी जो है एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देते हैं बिना कृष्ण के। तो क्या करते हैं वो, शौचालय में जाके बैठ जाते हैं कि वहां कोई आएगा नहीं, लोग जाते भी नहीं थे कि बदबू इतना आ रही है, लेकिन वो तो अलग ही स्थिति में है, घंटों दिनों दिनों तक वहीं बैठे रहते थे कि लोग परेशान करेंगे। तो एक ये स्थिति है किसकी, गौर किशोरदास बाबाजी महाराज और उनके शिष्य भक्ति सिद्धांत जी। तो उनको हम देखते हैं, उनमें हम देखते हैं कि कितना विचित्र हम उनको देखते हैं, साधु के रूप में साधु है लेकिन विचित्र साधु। क्यों विचित्र साधु है? गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियों का उपयोग कर रहे हैं, सूट बूट पहन रहे हैं, हाँ, वो बड़े बड़े मंदिर मठ उन्होंने बनवाए। तो हम थोड़ा सा विरोधाभास देख रहे हैं, विपरीत देख रहे हैं एकदम। तो यहां पे क्या है, भिन्नता है, लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वही है। क्या है? कि कैसे जीवात्माओं को, पतित जीवात्माओं को, बद्ध जीवात्माओं को भगवान की ओर लाया जाए। उसी परंपरा में हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी, बड़े बड़े जो है मंदिरों का निर्माण उन्होंने करवाया, बड़े बड़े पैलेस जैसे मंदिर, मतलब ऐसा कोई कल्पना भी नहीं करता, पहले बहुत सालों पहले ऐसे बड़े बड़े भव्य मंदिर हुआ करते थे, लेकिन हम देखे तो मंदिरों की कल्पना इतने भव्य रूप में इस्कॉन को देखने के पहले तो मतलब मुश्किल ही थी। तो इतने बड़े बड़े भव्य मंदिर बनाए। तो जब वृंदावन में, जो वृंदावन का जो मंदिर है जब बन रहा था, उसका जब कार्य चल रहा था, तो व्यक्ति ने पूछा कि स्वामी जी आप बताते हो कि आप रूपानुगा हो, और अगर हम देखें गोस्वामी को तो उनका कैसा भाव था, एक पेड़ के नीचे एक रात बिताते थे, एक पेड़ के नीचे दो दिन भी नहीं रहते थे, और आप बड़े बड़े जो है महल जैसे मंदिर बना रहे हो, तो कैसे समझे आप रूपानुगा हो। तो प्रभुपाद जी हम देखते हैं कि सुनते भी हैं जय कृष्ण भजे से बड़ा चतुर। तो भोपाल जी तुरंत जो है जवाब देते हैं, हार्डी जवाब जिसको कहते हैं, कि अगर मैं मंदिर नहीं बनाऊंगा, पेड़ के नीचे कीर्तन करूंगा, तो आप जैसे लोग आएंगे ही नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं है मंदिरों की, है ना। तो भोपाल जी बताते हैं कि मंदिर हमारे लिए नहीं है, ब्रह्मचारी इसके लिए भी बताते हैं कि कुछ दिन मंदिर में रहें, फिर प्रचार के लिए फिर बाहर जाएं, फिर आए फिर रहें फिर बाहर जाएं, यही रहेंगे तो भी हमारे लिए समस्या है, आसक्त हो जाएंगे। उदाहरण हम सुनते हैं गिद्ध का, इतनी ऊंचाई पे उड़ता है लेकिन फिर भी आसक्त रहता है उसके घर से, उसके मल का ढेर लगा होता है घर के नीचे, प्रभुपाद देते हैं उदाहरण, तो उससे समझ में आता है कि कितना आसक्त है जो इतनी ऊंचाइयों तक जा सकता है। तो प्रभुपाद जी ऐसा हाजिर जवाब देते हैं। एक जगह और हम सुनते हैं, एक पत्रकार जो है प्रभुपाद जी से पूछते हैं कि स्वामी जी आप सबको जो है भक्त बना रहे हो, तो सब भक्त बन जाएंगे, हरे कृष्णा में जुड़ जाएंगे, तो फिर कैसे होगा? तो प्रभुपाद क्या कहते हैं ऐसे भी, कि नहीं, कुछ मूर्ख रहेंगे आप जैसे जो नहीं जुड़ेंगे। तो प्रभुपाद जैसे हमेशा जवाब रहते हैं, तो इस भक्त को भी, इस व्यक्ति को भी जो है जवाब देके चुप कर देते हैं। लेकिन देखिए प्रभुपाद जी का भी जो भाव क्या है, वही क्या है, भगवान का प्रचार कितना हो, कितने से अधिक लोग भगवान की ओर आए, भगवान से जुड़े, संबंध को स्थापित, पुनः स्थापित करें। तो वही उद्देश्य है, क्या है? भगवान का प्रचार, भगवत प्रचार। और एक जगह मैं पढ़ रहा था, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो मंदिर है ये किस लिए है, ये कनिष्ठ भक्तों के लिए है। मतलब यहां पे किसी का अपमान नहीं किया जा रहा है, लेकिन बता रहे हैं, मतलब वो जो श्रेष्ठ सिद्धांत जो है, सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत, उसको यहां बता रहे हैं कि मंदिर जो है वो कनिष्ठ भक्तों के लिए है, और जो उत्तम भक्त हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए ग्रंथों की रचना और ग्रंथों का वितरण, ये उत्तम भक्तों का है। तो केवल बोला नहीं उन्होंने, उन्होंने अपने जीवन से बताया भी सही है। तो भाव क्या है, उद्देश्य क्या है, वही कि सब भक्तों को, लोगों को, बद्ध जीवात्माओं को भगवान की ओर लाया जाए। तो इस दृष्टिकोण से हम देखें तो गुरु एक है, कोई भिन्नता ही नहीं है, अभिन्न है। और रस के रूप में देखें या गुण देखें तो वहां हमें अलग अलग दिख सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है गुरु तत्व, वहां पर कोई अंतर है नहीं। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने जो है बहुत कठिन परिश्रम किया, भारत में कितना उन्होंने प्रयास किया लेकिन इतना कुछ हुआ नहीं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो मंदिर है वो मुख्य रूप से मूर्खों के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि जो मंदिर आ रहे वो मूर्ख हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि सुनते ना हम चमत्कार को नमस्कार, है ना, तो अधिकतर लोग कलयुग में ऐसे ही मिलते हैं, जब तक उनको कुछ ऐसा चमत्कार नहीं दिखेगा तब तक वो नहीं मानेंगे, उनको कुछ चमत्कार ही चाहिए। पूछते प्रभुपाद जी से, स्वामी जी आपने क्या चमत्कार किया, सुनते हैं ना प्रभुपाद लीलामृत में। तो इस प्रकार के लोग भी हैं, लेकिन ये जो मायाबद्ध जीव है वो इस प्रकार की मानसिकता रखता है, लेकिन जो बुद्धिमान होता है वो कैसा होता है, यजन्ति ही सुमेधसः, जो बुद्धिमान है वह क्या करता है, वो भगवान के नाम का संकीर्तन करता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा किया गया कार्य है या किया जाने वाला कार्य है। और इस प्रकार जो गुरु होता है वह देश काल परिस्थिति और योग्यता पात्र, इसके अनुसार जो है शास्त्र के ज्ञान को प्रस्तुत करता है, ताकि वो समझ सके और जो है भक्ति के लिए वह प्रेरित हो। तो इस प्रकार जो है गुरु जो होते हैं खुद भी भक्ति में लगे रहते हैं और बाकी सबको भी, अपने शिष्यों को जो उन पर आश्रित है उनको भी भगवान की भक्ति में लगाते हैं, केवल खुद से जोड़कर नहीं, वहां तक सीमित नहीं रहते हैं, खुद भी भक्ति में लगे हैं, पूर्ण श्रद्धा है आस्था है भगवान में, और जो उनके अनुयायी है, जो उनके शिष्य है, उनके जो आश्रित उन पर हैं, उनको भी किस में लगा रहे हैं, भगवान की भक्ति में लगा रहे हैं। तो ये वैष्णव हैं। तो एक बार परम पूज्य भक्ति सामत स्वामी महाराज, उनसे किसी ने पूछा कि ये वैष्णव और हिंदू में अंतर क्या है, स्वाभाविक प्रश्न है, ये कुछ अलग है क्या, हिंदू हम समझते हैं सनातन सुनते हैं ज्यादा, तो ये इसमें क्या अंतर है वैष्णव। दक्षिण भारत में ये नाम ज्यादा प्रचलित है वैष्णव करके, अदरवाइज इस तरफ हम देखें तो वैष्णव केवल सरनेम जो होता है ना, लास्ट नेम वही मिलता है। तो पूछता है कि वैष्णव और हिंदू में क्या अंतर है ऐसा, तो महाराज भी जो है बड़ी चतुरता से उत्तर देते हैं कि जो वैष्णव होता है वो क्या कहता है, केवल कहता नहीं है, वो अपनी स्थिति जानता है कि मुझे कुछ नहीं पता, इतना विनम्र होता है, किसी अहंकार में नहीं रहता किसी प्रकार के ज्ञान के, कि मुझे उस वैष्णव क्या कहता है कि मुझे कुछ पता नहीं है। बोले फिर हिंदू, तो बोले हिंदू वो जो कहता है मुझे सब पता है। तो हम देखते हैं भगवद गीता लेके जाते हैं तो हम जब देते हैं तो नहीं हमको तो सब पता है, अरे महाराज भगवद गीता में तो क्या है, हमको सब पता है, क्या लाए थे क्या ले जाओगे, खाली हाथ जाए थे खाली हाथ जाओगे, ऐसा तो कहीं है भी नहीं, जब हम पढ़ते हैं तो जानते हैं। लेकिन हम देखते हैं कई दुकानों पे वो गीता सार के रूप में वो 10 पंक्तिबद्ध जो है पॉइंट डाल देते हैं बोले ये गीता सार है, क्या लाए थे क्या ले जाओगे, और तो क्या यही पता है उनको, तो कहते हैं हमें सब पता है। लेकिन जो वैष्णव होता है वह पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है, वह पूर्ण ज्ञान क्या है कि भाई मैं जो हूं भगवान का सेवक हूं, जो जीव है वो क्या है, भगवान का सेवक है, दास है। तो खुद भी सेवा में लगा रहता है और सभी को अपनी जो वास्तविक स्थिति है उसमें लगाता है, उसके लिए प्रेरित करता है, उस ज्ञान को भी देता है, वो प्रकाश देता है, उस ज्ञान रूपी प्रकाश को देता है और उसको अंधकार से बाहर निकालता है। तो इस प्रकार गुरु तत्व जो है वो एक ही है, लेकिन व्यक्तिगत दृष्टि से हम देख सकते हैं कि अलग अलग भी है। तो इस प्रकार जो है गुरु तत्व है और कई उनमें भिन्नताएं हैं और विभिन्नताएं भी हैं, लेकिन उद्देश्य जो है वो है भगवान की भक्ति। और जो है किस प्रकार का आचरण उनका रहता है, तो वे खुद भक्ति में लगे रहते हैं और जो उनके शिष्य हैं, शिष्य मतलब जो शासन में रहे, किसके शासन में रहे, जो गुरु के शासन में रहे वह शिष्य है। ऐसा ही अपने मन से जो काम करे वह नहीं, तो जो गुरु के शासन में रहे। जैसे हम देखते हैं प्रभुपाद जी भी कहें कि जो नए भक्त जो आते हैं उनको कुछ विशेष प्रकार की एक ट्रेनिंग दी जाए, तो उसमें हम देखते हैं कि जिस प्रकार का एक टाइम टेबल दिया गया होता है, शेड्यूल, उसके हिसाब से हम कार्य करते हैं। ऐसा नहीं आज थोड़ा सा ज्यादा खा लिया तो आज फीस्ट हो गया तो आज 2 घंटा सोएंगे, ऐसा हम देखते हैं, है ना। तो कहने का मतलब यह कि जो शासन है उसके अनुसार, अनुशासन, अपने मन के अनुसार नहीं, तो वह शिष्य है। तो गुरु खुद भी वैसा आचरण करता है और शिष्य को भी क्या करता है, उसी प्रकार के सेवा में लगाता है जिसमें खुद लगा हुआ है, मतलब भगवान में लगा हुआ है, स्थित है पूर्ण रूप से, वो भगवान की सेवा में शिष्यों को भी जो है लगाता है। तो ये इस प्रकार का गुरु नहीं है जैसे हम देखते हैं आजकल सेल्फ डिक्लेयर्ड, खुद ही से अपने आप को घोषित कर देते हैं कि मैं गुरु हूं, मैं सदगुरु हूं, मैं वैसा गुरु हूं, प्रकार का गुरु अपने आप को बताते हैं। तो वास्तविक गुरु ऐसा नहीं होता है, वो अपने आप को गुरु मानता भी नहीं है, वो अपने को क्या मानता है, वो सेवक मानता है। प्रभुपाद जी भी कहते हैं, किसने उनसे पूछा, अलग अलग श्रेणी जब बता रहे तो कहते मैं तो एकदम लास्ट क्लास जो है, थर्ड फोर्थ क्लास, मतलब मैं सेवक या सेवा सेवक बनने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये स्थिति में अपने आप को वो समझता है, लेकिन जो तथा कथित जो गुरु होते हैं वो ऐसे ही जो है बुलबुले के समान उड़ते रहते हैं। लेकिन वो कैसे होते हैं, उनके जैसे बुलबुला जैसा होता है क्षणिक, वैसे वह भी होते हैं, वो उनके शिष्य भी वैसे ही होते हैं। तो जो गुरु होता है वह पूर्ण रूप से शास्त्रों का ज्ञान रखता है, पंडित। चाणक्य भी कहते हैं पंडित कौन है, मातृवत परदादेशु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडित, मतलब जो पूर्ण ज्ञान में स्थित है, शास्त्रों का ज्ञान उसको, वह पंडित है। और खुद भी ज्ञान ले रहा है परंपरा के अनुसार और उसको आगे भी बढ़ा रहा है। ऐसा नहीं कर रहा कि मैंने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा लेकिन मुझे सब पता है, फिर तो भगवान ही हो गया। बाकी सबको तो आवश्यकता है ज्ञान लेने की, भगवान भी बता रहे हैं कि खुद ज्ञान देके इस परंपरा को जो है वो उसका आरंभ कर रहे हैं। तो फिर ऐसा कौन व्यक्ति आ गया, बड़ा नहीं है लेकिन सब पता है। ऐसे कई लोग कहते हैं मैंने भगवद गीता नहीं पढ़ी लेकिन मुझे पूरी भगवद गीता पता है या सब पता है। तो ऐसे भी तथाकथित गुरु हैं, तो ऐसा नहीं होता है वह। और दूसरा, वह आसक्त नहीं होता है, अनासक्त होता है किसी प्रकार के इंद्रिय विषय से। लेकिन कई प्रकार के गुरु हम देखते हैं, किसी को मोटरसाइकिल का शौक है, किसी को फैशन का शौक है, किसी को अलग अलग तरह के जो है अलग अलग तरह के वस्त्र पहनने का, तो इस तरह के कई प्रकार के गुरु हैं। तो ये तो आसक्त है, तो वो जो खुद आसक्त है वो हमको कैसे बाहर निकालेगा। जैसे हमने उदाहरण देखा शुरू में, जिसका खुद का हाथ बंधा हुआ है वो दूसरे को कैसे मुक्त कर सकता है। तो ये जो सेल्फ डिक्लेयर्ड गुरु जो होते हैं, खुद गुरु बन जाते हैं, इनकी यही स्थिति होती है। तो ये जो वैष्णव जो होते हैं, जो वास्तविक गुरु होते हैं, वो इस प्रकार नहीं होते हैं। और क्या होते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम, उनकी कोई और अन्य अभिलाषा नहीं है, केवल क्या अन्य क्या अभिलाषा है, प्रतिदिन हम सुबह गाते भी हैं सेवा अधिकार दिए, तो वह क्या करता है, वह सेवा में लगा होता है। और कोई अभिलाषा नहीं है, केवल भगवान की सेवा, और किसी की सेवा नहीं, भगवान की सेवा, यही उसकी जो है इच्छा है, अभिलाषा है। तो यह वास्तविक गुरु है। तो इस प्रकार का जो भक्त है वह उत्तम कोटि का जो है उसको भक्त बताया गया है। कृष्णानुशीलनम, जो भी कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण की भक्ति के लिए, लोगों को कृष्ण से जोड़ने के लिए जो भी आवश्यक है उसको करता है, तो ये गुरु होता है। इसको उत्तम कोटि का गुरु बताया गया है, अपने आचरण से जो है सिखाता है, खुद का भी वैसा आचरण होता है, तो इस प्रकार जो है वह शुद्ध होता है, क्योंकि निरंतर भगवान की सेवा में लगे हुए है, इसलिए वह सदैव क्या है, वो शुद्ध है पूर्ण रूप से, मतलब तीनों जो गुण है उनसे ऊपर है, क्योंकि भगवान की सेवा से वह शुद्ध हो चुका है, भगवान की विशेष कृपा से वह शुद्ध हो चुका है। और इस प्रकार जब वो है बाकी लोगों को भी दिशा दिखाता है। तो यहां पर बिलमंगल ठाकुर इतने महान भक्त बने, लेकिन पिछले भक्त बनने के पहले पापमय कार्य में लगे थे, लेकिन अब भक्त बन गए हैं। यह हम सुनते हैं कि जब पहले भले ही वो भक्त ना हो, जैसे ध्रुव महाराज जो है उनकी सौतेली माता ने उनका अपमान किया, लेकिन बाद में भक्त बने तो उनको अपराध लगा, वैष्णव अपराध। तो वैसे ही भक्त अगर बन गया है तो फिर हमको उसके पुराने दोषों को देखते हुए या निंदा नहीं करना चाहिए। यह हम सुनते भी हैं कि वैष्णव से उसकी जाति या ऐसा पूछने का कोई औचित्य नहीं है, यह हमारे लाभ का ही नहीं है, क्योंकि फिर हम जैसे ही पूछेंगे या उस तरह इस तरह की लालसा रखेंगे, इच्छा रखेंगे, तो हम तुरंत वापिस वही वो जो भौतिक देह बॉडीली कंसेप्ट जो हमारा है उसी में वापस हम चले जाएंगे, तो उनको साधारण व्यक्ति समझेंगे, तो ये भी बड़ा अपराध है गुरु को साधारण व्यक्ति समझना। ऐसा कहते हैं, जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो असली उद्देश्य क्या है, संग लिया जाए साधु का, उससे भगवान के से संबंधित विषयों के बारे में पूछा जाए, चर्चा की जाए, सुना जाए, साथ में बैठ के जो है कीर्तन किया जाए भगवान के नाम का। लेकिन जिनकी प्रवृत्ति कैसी है, जो देहात्म बुद्धि में लगे हुए हैं, वो कैसे होते हैं, ऐसा एक कहावत बोलेंगे आप जो भी बोलेंगे, मैं सुना था कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और गधे से गधा मिले दे लत्ती दो लात। तो जो व्यक्ति वाकई में ज्ञान में स्थित है, सत्वगुण में है, तो वो साधु के संग का सही उपयोग लेगा, इस प्रकार का दोष नहीं देखेगा। लेकिन जो गधे जैसी बुद्धि वाला है वो वैसी बात करेगा, कौन सी जात का, ये कहाँ पैदा हुआ, पहले ये ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, शूद्र था, क्या था, तो ये सब पुराना हो गया है, अभी वो भक्त है, भगवान से संबंध उसका जुड़ गया है, हो गया है। तो इस प्रकार गुरु को साधारण व्यक्ति देखना, क्योंकि गुरु तत्व जो मुख्य है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। तो इस प्रकार यहां बिलमंगल ठाकुर जो है महान भक्त बने, उस महान जो है स्तर को भी वो है प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार जो है भक्त होते हैं, और भक्तों का हमेशा प्रयास होता है कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, किस प्रकार से भगवान के प्रचार कार्य को जो है बढ़ाया जाए। लेकिन जो देहात्म बुद्धि वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कौवे जैसे होते हैं, वो हमेशा गंदगी देखते हैं, या मक्खी का उदाहरण हम देखते हैं, मक्खी हमेशा गंदगी पे बैठती है, तो हमको मक्खी ना बनते हुए हमको मधुमक्खी बनना है, जो फूलों के रसों को इकट्ठा करती है और मधु बनाती है, जिसमें कई सारे गुण होते हैं। तो इस प्रकार गुरु को हमें साधारण भी नहीं समझना चाहिए, और जो है गुरु हमें जो है इस प्रकार की शिक्षा देते हैं ताकि हम भगवान की जो है सेवा में लग सकें। नहीं तो जो है नौतम दास ठाकुर कहते हैं कि हम अपना जो मनुष्य जीवन है उसको ऐसे ही गवा रहे हैं। हरि हरि विफले जन्म गोआइनु, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। तो हम अपने जो मनुष्य जन्म मिला है उसको हम व्यर्थ ही गवा देंगे। तो इसलिए जो है हमको गुरु का आश्रय हमको लेना अति आवश्यक है। और जब है और गुरु की कृपा के रूप में हमें भगवान कृष्ण की कृपा मिलती है, हम सुनते हैं ब्रह्मांड भ्रमित भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता भी। और जो है गुरु में भगवान की सेवा में लगाते हैं और अपना व्यक्तिगत मार्गदर्शन देते हैं, ऐसा नहीं एक बार मिले दीक्षा हो गई और फिर गुरु कहाँ है हमको पता ही नहीं, हम कहाँ हैं मिल रहे हैं क्या पता, उनके बारे में सोचते भी पता नहीं, लेकिन हाँ कहने को बोल सकते हैं, जैसे कोई भक्त मिलता है उनसे कुछ बात करता है, हमने भी गुरु किया है महाराज। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गुरु क्या होता है, वो व्यक्तिगत रूप से निर्देश देता है। प्रभुपाद जी भी दो जगहों पर बताते हैं कि जो गुरु है वह भगवान का प्रतिनिधि है। कैसा प्रतिनिधि, प्रभुपाद कहते हैं लिविंग रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जीवित प्रतिनिधि है, जो समय समय पर हमें सुधारता है, शिष्य को सुधारता है, गलत जा रहा है तो उसे टोकता है, वो वापस सही दिशा दिखाता है। तो व्यक्तिगत रूप से मतलब प्रकट रूप में जो है गुरु उनको सिखाते हैं। तो ये बात भी प्रभुपाद जी बताते हैं। तो गुरु कैसा होना चाहिए, प्रकट व्यक्तिगत रूप में जो होना, जिससे हम समय पर अपने आध्यात्मिक विकास के लिए जो है जिज्ञासा कर सकें। तो ऐसा है। और गुरु सदैव जो है सेवा भाव में रहते हैं, सदैव सेवा में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं वो अपने बस केवल कथा करते वक्त प्रवचन वक्त जो है बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं और फिर उनका आसन एकदम विपरीत है, ऐसा नहीं। सदैव सेवा में लगे हुए हैं। हम गुरु अष्टकम में गाते भी हैं, निकुंज यूनो रति केली सिद्धई। तो भगवान सदैव जो है गुरु सेवा में खुद भी लगे हैं और जो शिष्य जो हैं उनके आश्रित उनको भी भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने खुद पुस्तक वितरण का कार्य किया, एक एक पर्चा लेके जाते थे, है ना, और हमको भी उसी सेवा में लगाए हैं। तो हम इसको समझ सकते हैं इस उदाहरण के माध्यम से। तो जो गुरु की जो शरण है वास्तविक, उसका उद्देश्य क्या है, आध्यात्मिक विकास, भगवान के बारे में जिज्ञासा। तो यह जिज्ञासा होना चाहिए, इस उद्देश्य जो है हमें गुरु की जो है शरण लेना चाहिए। तो जिस प्रकार महान महान भक्त बताए गए हैं, प्रभुपाद जी भी कोई साधारण नहीं है। हम देखते हैं 11 वर्षों में 108 मंदिर उन्होंने स्थापित कर दिए, तो ये कोई साधारण कार्य नहीं है। तो गुरु को साधारण समझना ये भी एक जो है बड़ी भूल है, अपराध है। क्योंकि गुरु जो होता है वह सभी जो देवता हैं, देवता उनका प्रतिनिधि होता है। गौरव गोविंद महाराज बताते हैं, उनकी एक पुस्तक बहुत सुंदर पुस्तक है गुरु तत्व, बहुत अच्छे से उन्होंने, बहुत लेंदी बुक नहीं है, छोटी सी है, लेकिन बहुत अच्छे से उसमें बताते हैं। तो जो गुरु जो होता है वो सभी देवताओं का प्रतिनिधि होता है। और जो गुरु का संबंध है वो किसके साथ है, वो मुकुंद के साथ है, मतलब भगवान के साथ है, भगवान से जुड़ा हुआ है। तो जैसे हमने बात की गुरु तत्व, तो समझना मुश्किल है, मतलब भिन्न, भगवान से अभिन्न भी है और भिन्न भी है, तो एक तत्व है। तो सदैव मुकुंद के सानिध्य में है। तो इसलिए हम देखते हैं प्रतिदिन जब हम गाते हैं गुरु अष्टकम में, क्या गाते हैं हम, साक्षात हरि, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, सब शास्त्रों में हरि। तो क्या हरि के समान बताया गया है, मतलब क्या हरि ही है, जैसे मायावाद जो होता है सब एक है ना, अद्वैतवाद जो है कि सब एक है, तो ये तो वैसा हो गया, तो नहीं। इसलिए फिर अगली ही पंक्ति में क्या आता है, किंतु प्रभो यह प्रिय एव तस्य, किंतु आ गया, मतलब स्वयं भगवान नहीं है, है ना, और भगवान को प्रिय है वो। कैसे हैं भगवान को, किंतु प्रभो यह प्रिय एव तस्य, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो भगवान को अति प्रिय है मुकुंद, जो मुक्ति देने वाले हैं, जो इस संसार के अंधकार से हमको मुक्त करने वाले हैं, मुकुंद उनके सानिध्य में है, तो वे गुरु हैं। तो गुरु जो है शुद्ध भक्त है, भगवान के साथ सानिध्य में है, तो भगवान से एक तरह से अभिन्न भी है। और जो गुरु है वो कौन है, वह सेवक भगवान है, समान बताया गया है। और भगवान भी कहते हैं आचार्य इमाम जानिया, इसमें आता है इसी अध्याय में श्लोक संख्या 46। तो बताते हैं कि जो आचार्य है गुरु है उसे भगवान के समान ही हम सम्मान दें, भगवान मान ले ये नहीं, गुरु नहीं कहता मैं भगवान हूं, लेकिन हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वह शुद्ध भक्त है भगवान के सानिध्य में, तो वह सेवक भगवान है। और जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है वह सेव्य भगवान है। तो इस प्रकार ये जो है अचिंत्य भेदाभेद तत्व यहां पर हम उससे समझ सकते हैं। तो फिर ऐसा ही बताते हैं कि गुरु जो गुरु का जो निर्देश होता है, गुरु की जो वाणी होती है और जो शास्त्रों की वाणी है, ये एक ही है या इसमें अलग अलग बताया गया है, क्योंकि अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग बताया गया है। कई शास्त्रों में बताया गया है कि भाई इस प्रकार का पुण्य वाला कार्य करोगे तो आप स्वर्ग में जाओगे, इस प्रकार का पुण्य कार्य करोगे तो आप इस प्रकार का फल भुगतोगे। तो वेद व्यास जी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। क्या कहते हैं, हरि सर्वस्य गीयते, मतलब हर जगह भगवान का गुणगान किया गया है, हम नहीं समझ पाते हैं अपनी बुद्धि से। तो इसलिए हमको जो है गुरु की शरण लेना है, गुरु के माध्यम से हम समझ पाएंगे कि जो शास्त्र हैं वो हमें भगवान की ओर ही उन्मुख कर रहे हैं, और साथ में जो गुरु हैं, जो आचार्य वह भी हमें भगवान की ओर लेके जाते हैं। कोई उनके वाणी में, गुरु के निर्देश में और शास्त्रों के या वेदों के निर्देश में कोई अंतर नहीं है। जैसे जिस प्रकार जो वेद है भगवान की वाणी है और गुरु भगवान से अभिन्न है, तो उनकी वाणी भी भिन्न होगी नहीं। जो शास्त्र में कुछ अलग नहीं है या उनकी वाणी उससे कुछ अलग नहीं है, तो गुरु स्वयं उस ज्ञान में स्थित है और इसलिए वह जो शिष्य है उनको प्रकाश देते हैं। तो इसमें से बताया गया है बिलमंगल ठाकुर जो विष्णु स्वामी के प्रमुख शिष्य थे। तो विष्णु स्वामी मतलब हम देखते हैं जो रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय जो है, फिर हम देखते हैं ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, फिर निम्बारकाचार्य हैं कुमार संप्रदाय से, रामानुजाचार्य हैं श्री संप्रदाय से, तो अलग अलग जो हैं आचार्य हुए हैं। और इन्होंने अलग अलग शुद्ध अद्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, द्वैत अद्वैतवाद, विशिष्ट जो है द्वैतवाद, इस प्रकार के अलग अलग वाद दिए हैं। लेकिन हमें आचार्य बताते हैं चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य, उन्होंने हमें एक विशेष तत्व दिया है इन सब अलग अलग वादों को समझते हुए। क्या दिया है? अचिंत्य भेदा भेद तत्व। तो इसलिए जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय जो है ये बहुत ही प्रामाणिक है, स्वयं भगवान इसमें आए हैं और इस प्रकार का जो तत्व दिया गया है बहुत ही प्रामाणिक है, सर्वश्रेष्ठ है भगवत प्राप्ति के लिए, ऐसा आचार्य बताते हैं। हम पालन कर रहे हैं इसलिए सर्वश्रेष्ठ नहीं, माई वे इज हाई वे ऐसा नहीं, ये आचार्यों का मत है, जो शुद्ध भक्ति को प्राप्त किए हैं उनका मत है, उनका ऐसा कहना है कि सबसे जो है सर्वश्रेष्ठ जो है। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं, प्रभुपाद जी की कृपा से हम भाग्यशाली हुए ऐसा कह सकते हैं कि हम परंपरा में हमें जुड़ने का जो है अवसर मिल रहा है। तो इस प्रकार जो है ज्ञान गुरु परंपरा के माध्यम से आता है। गुरु परंपरा को देखिए कहीं भी उसका उसको हटाया नहीं गया, उसका निषेध नहीं किया गया है, उसको उसका विरोध नहीं किया गया है। वो भी प्राकट्य रूप में, मतलब व्यक्तिगत रूप से गुरु शिष्य परंपरा आगे बढ़ना चाहिए। तो जो गुरु होता है वह क्या करता है, वह गुरु की पदवी के लिए आगे नहीं आता है, वह इसको एक कर्तव्य के रूप में लेता है और उस स्तर पर आता है ताकि बाकी को भी सेवा में लगाए, खुद भी सेवा में लगे, ताकि गुरु शिष्य परंपरा है जो आगे बढ़ती रहे, वो समाप्त ना हो जाए। और भगवान भी इसलिए शुरू करते हैं और ये परंपरा प्रभुपाल जी हमें बताते हैं। तो इस प्रकार जो है गुरु का इतना ऊंचा पद है, वह स्थिति गुरु की है। और कैसे प्राप्त करता है, या महान भक्ति से यहां पे हुए बिलमंगल ठाकुर, तो वही जब हम गुरु की शरण लेते हैं तो कई शिक्षा गुरु होती है, इनके माध्यम से हम भगवान की ओर उन्मुख हों, आध्यात्मिक लाभ या प्रकृति के लिए हम कुछ निर्देश लें उससे हमको लाभ हो, तो ऐसे कई शिक्षा गुरु हैं। और फिर दीक्षा गुरु होते हैं, जैसे हमने अभी सुना कि गुरु जो होता है वह कर्तव्य के रूप में देखता है, मतलब जो है वह रिस्क, मतलब किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, किसी प्रकार की जो है कष्ट लेने को तैयार है। मतलब जो दीक्षा गुरु होता है वह शिष्य का सभी प्रकार का पुराना जो पाप है वो और आने वाला पाप भी, ऐसा ऐसा कौन होगा भाई, है ना। हम कथा सुनते हैं वाल्मीकि, जब पहले वो क्या थे चोर डाकू जो भी थे, तो उनसे नारद जी कहते हैं भाई जिनके लिए कर रहे उनसे आके पूछ के तो आओ, थोड़ा बहुत बांटेंगे क्या, तो नहीं मना कर देते हैं, है ना। तो ऐसा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं बांटता है, न पत्नी न माता पिता न बच्चे न भाई बहन, कोई नहीं बांटता है। अगर कोई से बोलो थोड़ा सा पाप शेयर करोगे क्या, धन धन शेयर कर लेंगे, बंटवारा एकदम बराबर होना चाहिए। लेकिन तो गुरु वह स्थिति को ले रहा है किसके लिए, हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए। तो यह स्थिति जो है गुरु की है, हमें हमें वो संबंध ज्ञान देता है कि भाई संबंध हमारा और भगवान का संबंध क्या है, हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, कि हम भगवान के सेवक हैं। इस प्रकार जो है हमें भगवान से वह जोड़ता है। तो फिर भी अगर हम ऐसे अंतर करते हैं गुरु में, नहीं ये गुरु होना चाहिए या केवल एक ही गुरु है और फिर कोई गुरु नहीं हो सकता, एक ही शुद्ध गुरु है, या इस प्रकार का कई प्रकार का अंतर हम करते हैं, तो गुरु तत्व को हमको समझना है और वह हमारे आचार्य ने समझाया है, और यही तत्व उस किताब में बहुत अच्छे से बताया गया है, गौरव गोविंद गोसाई महाराज की जो किताब है गुरु तत्व करके, और कई सारे जो वरिष्ठ भक्त इस्कॉन में है उन्होंने भी जो है इस पर कई जो है हमें लेक्चर प्रवचन मिलते हैं। तो जो है इस प्रकार गुरु हमें भगवान के साथ हमारा संबंध बनाता है। तो जो गुरु तत्व है वह भगवान से भिन्न है और अभिन्न भी है। तो यही वह सम्मान बिलमंगल ठाकुर, जिसने थोड़ी सी एक निर्देश से भगवान की ओर उन्मुख हो गए, चिंतामणि उसको उतना पद दिया, मतलब सबसे पहले रख रहे हैं, दीक्षा गुरु के भी पहले रख रहे हैं। हालांकि शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु में अंतर हमें नहीं करना चाहिए, सब प्रभुपाद जी हमें बताते हैं। हाँ हो गया मेरा प्रभु जी, क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा समय से मैं ऊपर चले गया। तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। किसी का कोई टिप्पणी कोई प्रश्न है तो कोई प्रश्न नहीं, हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय।